था, रूह वही रूह नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं मालती जोशी की लिखी कहानी हादसे और हौसले। मेहंदी तो बड़ी प्यारी लगाई है, अनुजा ने रीना की हथेली सहलाते हुए पूछा। किस खुशी में? मेरे ममेरे भाई की शादी है ना 24 को, कल उसका लेडी संगीत था, और आजकल तो लेडी संगीत में मेहंदी इज अ मस्ट। कोई 7-8 लड़कियां बुलवाई थी मामी ने। क्या तेरे की, तो सोच रही थी कि तुम कोई खुशखबरी सुना रही हो। वो पिछले हफ्ते जबलपुर से लोकबाग आए थे, उसका क्या हुआ? होना क्या था, उसके यहाँ से तो हाँ आ गई थी, पर मैंने ही मना कर दिया। क्यों? उसकी सैलरी पता है? सिर्फ 35,000, 35,000 only। बताओ, इतने में गुजारा होता है आजकल? मुझे तो किसी को बताने में भी शर्म आएगी। अनुजा कुछ बोली नहीं, सिर्फ उसे घूरती रही। ये अब तुम मेरे घर वालों की तरह शुरू मत हो जाना। हमारी दादी जी बोली, तेरे दादाजी तो 350 पर रिटायर हुए थे। माता श्री बोली, मेरी शादी हुई तब तेरे पापा की तनख्वाह सिर्फ 1,500 थी। अरे किस जमाने की बात कर रही हो भाई, आज तुम अपनी काम वाली पाई को 1,500 दे रही हो। तुमने वो दिल्ली वाला प्रपोजल नाहक रिजेक्ट कर दिया। लड़की की सैलरी भी अच्छी थी और पिता का बिजनेस भी था शायद। तुम्हें बताया तो था, तीन अनब्याही बहनें थीं, उनको निपटाते निपटाते ही आधी जिंदगी गुजर जाती, अपनी लाइफ कब एंजॉय करते, और फिर सिर्फ शादी पर ही तो सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता, जिंदगी भर करना पड़ता है। तुम तो कोई इकलौता बंदा ढूंढ लो।
वो भी देख चुकी हूँ,
नासिक का प्रपोजल था, लड़का इकलौता था, पर घर एकदम बाबा आदम के जमाने का। रेनोवेट करवाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
इकलौते चिराग हैं तो अलग रहने का सवाल ही नहीं उठता।
रीना आजकल तुम्हारी बड़ी फिक्र होने लगी है।
क्यों? यह जबलपुर वाला कितने नंबर का था?
16। क्या? मुझे डर लग रहा है हालत कहीं कविता मैडम जैसी ना हो जाए।
ये
दोस्त होकर ऐसी बद्दुआ तो मत दो, कहते हुए रीना उठ खड़ी हुई। कुर्सी सरकाते हुए जैसे उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, उसे तो जैसे लकवा मार गया। कविता मैडम ठीक बगल वाली मेज पर बैठी थी, वे कब आई उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों ने उन्हें साथ ही देखा और उनके पसीने छूट गए।
हेलो,
कविता मैडम ने अपने हमेशा वाले अंदाज में विश किया। दोनों ने झट बाहर गिरा ली। कैंटीन का कांच वाला दरवाजा ठेल कर वे बाहर आईं और कुछ क्षण खड़े रहकर खुलकर सांस ली। दिल दोनों के बुरी तरह धड़क रहे थे।
उन्होंने सुन लिया होगा क्या?
कितना सुना होगा?
कम से कम बद्दुआ वाली बात तो जरूर ही सुनी होगी।
तुम्हें उनका नाम लेने की क्या जरूरत थी?
मैंने तो सिर्फ तुम्हें वार्न करना चाहा था, इसलिए उनका उदाहरण दे डाला,
अनुजा ने रुआसे स्वर में कहा।
ठीक है,
अब आगे से ध्यान रखना, नो पर्सनल टॉक इन कैंटीन यार। रीना दिन भर परेशान रही। कविता मैम उसकी इमीडिएट बॉस नहीं थी, पर सीनियर तो थी, उन्हें नाराज करना किसी भी तरह हितकारी नहीं था। अनुजा पर गुस्सा आ रहा था और उसने भी एक वेलविशर की तरह उसे समझाना चाहा था। वह इस तरह रिश्ते नकारती चली गई तो एक दिन सचमुच उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाएगी जहां गलत समझौते करने पड़ेंगे। उसने तो पहले रिश्ते पर ही हाँ कर दी थी, स्वप्न जीवी उम्र थी वह, पर तब घर वाले भी मर गए थे। अपनी सुंदर गुणी कमाऊ कन्या के लिए वे अच्छे से अच्छा पर चाहते थे। वह रिश्ता रीना की मौसी लाई थी, यहां से इनकार आने पर उनका मुंह सूज गया था। कहती थी, देखती हूँ अब कौन सा राजकुमार आता है।
राजकुमार न सही, पर ढंग का आदमी तो हो,
यहाँ तो एक से एक नमूने सामने आ रहे हैं। सैलरी का सवाल भी आजकल अहम हो गया है। पर्सनालिटी भी तो कुछ मायने रखती है। हर किसी लल्लू पंचू के गले में तो जयमाला नहीं डाल सकती ना। कल को फिर यही लोग कहेंगे कि ऐसा ही करना था तो वो अमुक तमुक क्या बुरा था। पहले तो इन्हीं लोगों ने सपनों को हवा दी है और अब यही लोग परेशान हो रहे हैं। फिर कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो लड़का उसे पसंद आ गया उसी ने रिजेक्ट कर दिया। फिर कई कई दिन तक वह अवसाद से उबर नहीं पाती है। पंडित पुरोहित मित्र परिजन मैरिज ब्यूरोस सब जुटे हुए हैं, पर बात बन ही नहीं रही है तो वो क्या करे। ऐसे में अनुजा ने कविता मैम को उदाहरण देकर उसे तो एकदम हताशा के गर्त में ही ढकेल दिया था। कविता मैम की शादी बहुत बड़ी उम्र में हुई है, वह भी एक रिटायर्ड फौजी से जिसकी एक टांग नकली है। अगले कई दिनों तक वह कविता मैम के सामने पढ़ने से कतराती रही, पर एक दिन उनके सामने जाना ही पड़ा। अकेली नहीं थी वह, सेक्शन के सारे लोग उसके साथ थे। उस दिन सबको अपनी मेज पर एक खूबसूरत कार्ड मिला था। कविता मैम की शादी की 5वीं वर्षगांठ का निमंत्रण पत्र था। बधाई देना तो जरूरी था। सब लोग दल बांधकर उनके केबिन में पहुंचे थे। वे हंसकर बोली, शादी की सालगिरह का तो बहाना है, दरअसल घर को रेनोवेट किया है, उसी की पार्टी है। मैम, इससे तो अच्छा था आप नया घर ले लेती, पुराने वाले को रेनोवेट करवाने में मेहनत भी ज्यादा लगती है और पैसा भी। फिर भी पुराना लुक तो जाता ही नहीं, अलका ने कहा। मेरी भी यही इच्छा थी, पर क्या करूं, मैं घर को छोड़ना चाहती हूँ और वह मुझे नहीं छोड़ता। मतलब, वे हंसती अपनी स्वच्छ निर्मल हंसी बोली, शादी के बाद मैं अपने फ्लैट रहने चली गई थी। मुश्किल से 2 साल रह पाई थी कि माँ गुजर गई, पापा के लिए लौट नहीं पड़ा। फिर पापा चले गए। अमेरिका वासी दोनों भाई उस मौके पर आए थे, बोले, हमें तो अब वापस लौटना नहीं है, यह घर आज से तुम्हारा हुआ, चाहे बेचो चाहे रख लो, तुम्हारी मर्जी। तो इसे माँ पापा का आशीर्वाद समझ के मैंने रख लिया। मैम, कुछ मदद करवानी हो तो कहिएगा, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। यूं तो हर चीज का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, पर आओगी तो अच्छा लगेगा। बाद में सब ने अलका को खूब आड़े हाथों लिया। इतना लल्लो चप्पो करने की क्या जरूरत थी। कर्टसी है भाई, मेरी बॉस है वो और उसी मोहल्ले में रहती हूँ मैं, इतना तो बनता है, तुम लोग पर कोई जबरदस्ती थोड़े ही है। काफी ना नुकर के बाद तय हुआ कि पार्टी वाले दिन सब लोग अलका के घर पर इकट्ठा होंगी और साथ ही जाएंगी। वे लोग पहुंची तब लॉन में कैटरर के आदमी बिखरे पड़े थे, कुर्सी टेबलों का चादरों का ढेर लगा था। मैम के पति उन लोगों को भीतर लेवा ले गए, रीना ने उन्हें पहली बार देखा था, काफी स्मार्ट लग रहे थे, देखकर पता ही नहीं लगता था कि उनकी एक टांग नकली। मैम ने एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में उन लोगों का स्वागत किया। कमरे की सज्जा देखते ही बनती थी। अनुजा तो एकदम बोल पड़ी, मैम, कमरे का इंटीरियर तो बहुत ही प्यारा हुआ है, किससे करवाया। इस कमरे पर मैंने सबसे ज्यादा खर्च किया है, ये मेरे पापा का कमरा है, जीवन के 14-15 साल उन्होंने इसी कमरे में गुजारे हैं। कैसे? सालों पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। एक्सीडेंट में प्राण तो बच गए थे, पर कमर के नीचे का पूरा शरीर लुंच पुंच हो गया था। उनकी दुनिया इसी कमरे में सिमट कर रह गई थी। उस एक्सीडेंट ने उनका ही नहीं हमारा भी जीवन बदल दिया था। पढ़ाई छोड़कर मुझे नौकरी करनी पड़ी थी क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं था। भाई लोग पढ़ रहे थे। वे लोग अब कहाँ हैं? कुछ दिन बताया था ना, USA में बड़ा वाला इंजीनियर बना, तो हमें कुछ आस जगी थी, पर वह बाहर जाने की फिराक में था। 1-2 साल यहाँ नौकरी की और अमेरिका चला गया। सिर्फ शादी के लिए एक बार आया था और दूसरी बार पापा की मृत्यु पर। छोटा भी उसी की राह पर चला, उसने तो शादी भी वहीं की, बस पापा के मरने पर आया था। शायद इसीलिए मैम आपकी शादी बहुत लेट हुई ना, शिल्पी ने डरते डरते पूछा। ऐसा ही समझ लो, पापा का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज हम शादी की 18वीं या 20वीं सालगिरह मनाते होते। मतलब आप सर को पहले से जानती थी, अनुजा ने पूछा। हाँ, कॉलेज से ही जानती थी। तय था कि पढ़ाई पूरी होते ही घर वालों से बात करेंगे। हम दोनों के माँ बाप मना भी करते तब भी शादी तो हमें करनी ही थी, पर विधि को कुछ और मंजूर था। पापा का एक्सीडेंट हो गया और मेरी दुनिया ही बदल गई। फिर मैंने जयदेव से कहा कि मेरा तो अब इस चक्रव्यूह से निकलना मुश्किल है, पर मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लूँ। शादी तो उन्होंने नहीं की, पर शायद डिप्रेशन में आकर आर्मी ज्वाइन कर ली। परसों बरस हमें उनका पता ही नहीं चला। फिर एक दिन खबर मिली कि युद्ध में अपना एक पैर गंवा कर लौटे हैं। आर्मी के आदमी थे, तुरंत ही कृत्रिम पैर की व्यवस्था हो गई, पर आत्मविश्वास वह तो चूर चूर हो गया था। वह कौन लौटा था? मैंने अपंगता को बहुत निकट से देखा था, उस पीड़ा को परोक्ष रूप से ही सही अनुभव किया था। सारा संकोच त्याग कर मैं उनके पास गई और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। बहुत नाराज हुए, उनके अहम को गहरी ठेस लगी थी। बोले, मैं समर्थ हूँ, सक्षम हूँ, मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, आपको नहीं होगी, पर मुझे दया और सहारे की जरूरत है। इतने सालों से घर परिवार का बोझ ढोते ढोते मैं थक गई। आपको अब मेरी मदद करनी ही होगी, मैंने सालों इंतजार किया है। बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया जा सका। बिना किसी टीम टाम के हमारी शादी हो गई। मैं उनके नन्हे से फ्लैट में आ गई। वे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। पर अच्छी चीजें ज्यादा दिन तक नहीं रहती ना, वैसा ही हुआ। सालों साल पापा की सेवा करते करते माँ थक गई थी। बेटों के विदेश में बस जाने से टूट भी गई थी। वे भीतर ही भीतर कितना छींच गई थी, इसका पता तब चला जब वे एक दिन सोई तो उठी ही नहीं। बेमन से ही सही घर लौटना पड़ा। पापा को फ्लैट में ले जाना नामुमकिन था। जयदीप बड़ी मुश्किल से यहाँ रहने को तैयार हुआ, पर पापा की उन्होंने जो सेवा की है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके बेटों ने भी ऐसी सेवा नहीं की होगी। बेटे तो खैर पहले ही भाग खड़े हुए थे, पापा के मरने के बाद ही लौटे आखिरी बार। मैम, कभी बच्चों के बारे में नहीं सोचा? शिल्पा ने डरते डरते एक सवाल उछाला। समय ही कहाँ था, और अब तो उम्र भी नहीं है। खेलने खाने की उम्र से जिम्मेदारियों का पहाड़ ढोते ढोते थक गई। अब जाकर खुलकर सांस लेने का मौका मिला है। अब किसी की नई जिम्मेदारी की कल्पना से भी रूह कांपती है। अब जो भी समय मिलेगा हम एक दूजे को देना चाहेंगे। बहुत देर में ही सही, एक दूसरे का साथ मिला है, उसे एंजॉय करना चाहेंगे। ओ, व्हाट अ लव स्टोरी, लड़कियों ने कोरस में कहा। यह स्टोरी नहीं है बच्चों, जिंदगी की हकीकत है। शादी सिर्फ पेस्लिप का मिलान या डिग्रियों की जुगलबंदी नहीं होती, यह एक एडजस्टमेंट है और एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट है। और पनिशमेंट भी, सबने चौंक कर देखा। 3-पीस सूट पे सजे जयदीप खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनका खिला खिला चेहरा उनकी अपनी ही बात को छुटला रहा था। अरे वाह, दूल्हे मियां तो तैयार भी हो गए। हाँ, और अब आप भी अपने लेक्चर को फुल स्टॉप देकर अपना हुलिया सुधार लें। 7 बजने को है। बाप रे, बोलती है तो बोलती जाती है। Poor girls, they must be bored to death. No sir, it was a pleasure. सबने एक साथ कहा।
और वह एकदम सच था।
गाथा में अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी की लिखी कहानी हादसे और हौसले। गाथा में इस कहानी को प्रस्तुत किया है सुबानी ने।